जय माँ, जय जय माँ। श्री अरविंद ने हम सबको एक बहुत ही अद्भुत चाबी दी है, जीवन को, संसार को, समाज को, सभी चीज़ों को समझने की। और वो चाबी है जिसका नाम है इवोल्यूशन, विकास, जो क्रम तर क्रम होता रहता है, जैसे एक सोपान से दूसरे सोपान पर हम जाते हैं। और इसके तीन आयाम होते हैं, जैसा कि बताया बड़े सुंदर ढंग से, कि सृजन होता है और विध्वंस होता है, लेकिन सृजन और विध्वंस के बीच में एक और आयाम आता है जिसमें हम जो सृजन हुआ है उसको प्रिजर्व करते हैं, वो चीज़ें एक प्रकार से एक नई भूमि पर पहुंच करके वो उनमें ठहराव आता है। बाकी सारी जो आसपास की चीज़ें हैं, वातावरण है, समाज है, संसार है, वे सब उसके अनुरूप गढ़ी जाती हैं। और फिर वही चीज़ों का एक समय, वो ये सब कुछ समय के अधीन है, काल के अधीन, और फिर जब उनका काल पूरा हो जाता है तो अपने आप वो विध्वंस की ओर चली जाती हैं। तो चूंकि ये बीच में एक मध्यवर्ती कड़ी है, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश के उससे भी देखें, तो एक जब प्रिजर्विंग, जब चीज़ें प्रिजर्व होती हैं, ये सृजन और विध्वंस साथ साथ चल रहे हैं, वो एक सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि पहले सृजन की चीज़ों को संजोया जाता है, उसके बाद उनको आगे ले जाने के लिए वे चीज़ें जो अब अनावश्यक हो गई हैं उनका विध्वंस होता है। सभी चीज़ों का विध्वंस नहीं होता है, वे चीज़ें जो तैयार हैं विकास की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए वे चढ़ जाती हैं और बाकी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। तो ये तो प्रक्रिया है जिसमें हम सभी चीज़ों को समझ सकते हैं, यहाँ तक कि जो पुनर्जन्म की बात है, अगर हम जीवन को देखें जन्म से शरीर में, तो ये दोनों प्रक्रियाँ एकदम जन्म के साथ साथ जुड़ जाती हैं। पूरे एक शरीर के अंदर कई जो हमारी सेल्स हैं वो अपनी कोशिकाएं धीरे 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 अपना काम करती हैं, सीखती हैं, और उसके बाद एक समय आता है जब वो विध्वंस की ओर जाती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं आती हैं। और इसमें हम देखते हैं कि ये जो पीछे छूटने की प्रक्रिया और क्या आगे जाता है, उसमें बचपन से जब हम युवावस्था में जाते हैं तो एक मध्यवर्ती अवस्था होती है जिसमें संघर्ष होता है, संघर्ष होता है हमारे बचपने के बीच और हमारी युवावस्था के बीच में। और उस संघर्ष के बाद में वो कभी कभी ये संघर्ष बहुत संकट का रूप ले लेता है, कन्फ्लिक्ट लीडिंग टू क्राइसिस, और फिर उसके बाद फिर वो परिवर्तन। तो परिवर्तन जब एक नई अवस्था आती, युवावस्था, तब आप युवा की सोच समझ, उसके तौर तरीके उसमें हम अवस्थित हो जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद फिर एक मिड लाइफ क्राइसिस आती है जिसमें अगेन हम फिर यही देखते हैं कि एक संघर्ष होता है और वो संघर्ष धीरे धीरे वो हमको आगे बढ़ाकर ले जाता है, प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। और वृद्ध अवस्था के बाद भी अगर हम देखते हैं तो अल्टीमेटली वो अंत नहीं है, वो एक जीवन का चक्र है जहाँ फिर से हमारे अंदर जो कुछ पुराना है, जो रहना चाहता है, जो अटैच्ड है, जो किसी तरह से चिपका हुआ है उसमें, और जो हमारे वो स्वप्न हमने सजोए हैं जो कभी शायद साकार नहीं हो पाए इस जीवन में, इन दोनों के बीच में एक संघर्ष होता है। और फिर मृत्यु का सोपान को पार करते हुए हम लोग, डेथ इज ए स्टम्बलिंग स्ट्राइड द सोल मस्ट टेक, तो उसको सोपान को पार करते हुए हम फिर से एक पुनर्जन्म या नए जन्म की ओर आते हैं। तो इस दृष्टि से जब हम जीवन को समझने लगते हैं तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक संतोषजनक तो है ही, शांति प्रदान करती है कि ठीक है, जो क्राइसिस है, हो सकता है ये क्राइसिस अभी और तीव्र हो, संकट तक ले जाए, कन्फ्लिक्ट जो है क्राइसिस तक ले जाए, और क्राइसिस उसके बाद, लेकिन यदि हम उसमें एंड्योर करना जाने तो वो चेंज की ओर ले जाएगी। ये जीवन का एक नियम है और युद्ध उसी की कड़ी में एक जब घोर संकट की अवस्था से, एक तो होती है कन्फ्लिक्ट जहाँ केवल संघर्ष है, लेकिन वो संघर्ष मनोवैज्ञानिक भूमि पर हो रहा है, वो संघर्ष इकोनॉमिक भूमि पर हो रहा है, लेकिन वो संघर्ष चलता चलता या आइडियोलॉजिकल भूमि पर हो रहा है, वो संघर्ष आते आते एक समय एकदम भौतिक स्तर पे उतर जाता है और वहाँ पे जिसको कहते हैं करो या मरो, ये वाली अवस्था होती है और उसके द्वार से गुजर करके परिवर्तन आता है। तो ये आवश्यक है समझना, क्योंकि कई बार लोग समझते हैं, सोचते हैं कि भाई अभी नया जगत आ गया। श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि बड़ा अच्छा होगा, नया जगत आगे आ गया है तो अब युद्ध नहीं होंगे। तो श्री अरविंद कहते हैं कौन जाने, युद्ध के द्वार से ही गुजर करके हम नए जगत की ओर जाएंगे। हाँ, एक उपाय है, अगर पुराना जगत अपने आप को इतना प्लास्टिसिटी हो जाए, परिवर्तन के लिए वो इतना प्रस्तुत हो, तैयार हो, तो शायद युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन ये कुछ एक प्रकार की ड्रीम, एक प्रकार का स्वप्न होगा। क्योंकि क्यों ये स्वप्न होगा, क्योंकि सृजन के बाद जो उस सीढ़ी पर जो चेतना ठहरती है, वो ठहराव बहुत मनुष्य को या चेतना के उस सोपान पे जो भी जीव हैं उनको वो बहुत जकड़ करके पकड़ता है। क्यों जकड़ करके पकड़ता है? ताकि वो पीछे ना गिरे, ये आवश्यक है। और वही चीज जिसने उसको पीछे गिरने से रोका है, वही चीज उसको आगे बढ़ने से रोकती है। तो अगर हम आज के युग में देखें, मनुष्य कैसे बनता है, जब पशुत्व से हम मनुष्यत्व के गुणों की ओर जाते हैं, जिसमें माँ बड़े सुंदर ढंग से कहती है कि मनुष्य कैसे बनता है, जब वो हम अपने प्राणिक आवेगों को, एनिमल नेचर को मॉरल और मेंटल आइडिया से कंट्रोल करते हैं। तो ये तो मनुष्य हुआ। लेकिन अगर आपको मनुष्यत्व के परे जाना है तो समस्या होती है, क्योंकि ये बड़े कठिन प्रयास और श्रम के बाद, अगर हम यूं देखें तो श्री राम के समय से ये प्रोसेस जो चल रही है, धीरे धीरे मनुष्य के अंदर एक प्रकार की नैतिकता का, कम से कम कुछ मूल्यों का विकास हुआ है। अब अगर आपको जाना है उसके आगे आध्यात्मिक भूमि पर, तो वही चीज़ें हैं जो हमको उस चेतना के सोपान पर व्यवस्थित करती थी, स्थित करती थी, स्थिर करती थी। अब वह फिर से टूटेंगी, और जब वो टूटेंगी तो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो वे लोग जिन्होंने बाहर से केवल चीज़ों को पकड़ा था, यानी मानव मूल्यों को उन्होंने किसी इस कारण पकड़ा था क्योंकि समाज का दबाव था, या कोई लॉ थी, मतलब लीगल नियम कानून थे, जिसके डर के कारण वो उन्होंने एक मानवोचित जीवन शैली अपनाई हुई थी, लेकिन अंदर से उनके अंदर परिवर्तन नहीं था। तो अब जैसे ही वो कड़ियाँ टूटती हैं, इसी कड़ियों के टूटने को धर्म सिग्लानी कहा गया। धर्म सिग्लानी इज नॉट कि लोगों ने बाहर से रिचुअल करना छोड़ दिया और ये करना छोड़ दिया, व्रत उपवास छोड़ दिया, नहीं। धर्म सिग्लानी की हर स्टेज का अपना एक धर्म होता है। जैसे एक बालोचित धर्म है, तो बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें जो उसका, इसलिए उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया। अब फिर आता है एक युवावस्था का धर्म, जो गृहस्थ आश्रम है। तो अगर आप बाल भाव से केवल रहेंगे तो आप युवावस्था में प्रवेश करने में कठिनाई होगी, और अगर आप प्रौढ़ अवस्था में या वृद्ध अवस्था में भी एक युवा व्यक्ति की तरह आप व्यवहार कर रहे हैं तो आपको उसमें जाने में कठिनाई होगी। तो इस प्रकार से हर एक अवस्था का अपना एक धर्म होता है, और वो जब टूटता है, तो जब मनुष्य उचित धर्म जो है अगर लोगों ने बाहर से पकड़ा होता है तो वो टूट जाती हैं कड़ियाँ, तो वो फिसल जाते हैं। ये भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मनुष्य का रूप लिए हुए हैं, मनुष्य जैसा उनका व्यवहार है बाहर से, लेकिन अंदर से परिवर्तित नहीं है। कई हजारों वर्षों के बावजूद भी उनके अंदर पशुत्व या राक्षसत्व, बहुत राक्षसत्व तो खैर कम है अब, लेकिन पशुत्व तो है, तो उनके अंदर ये डर रहता है या भय रहता है, इसकी संभावना रहती है कि वे पीछे फिसल करके गिर जाएंगे नीचे पशुत्व की ओर। लेकिन कुछ जो हैं जिन्होंने इसको अपने अंदर से पकड़ा हुआ है, यानी जैसे एक सात्विक मनुष्य जो अब जिसने अपने ही अंदर से वो समझता है कि नहीं, शायद मुझे इस तरह से जीवन जीना चाहिए, इसलिए नहीं कि कोई उसको डर है समाज का या किसी नियम का या किसी किसी विधान का। तो अब उस तरह के लोग हैं, जब ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस आती है तो वो उड़ करके आगे की ओर चले जाते हैं, क्योंकि अब वे तैयार हैं, अंदर से वो मनुष्य बन गए हैं। और वो तब जाते हैं जब मनुष्य अपने मॉरल और मेंटल आइडियाज़ की जगह स्पिरिचुअल इंट्यूशन को मान करके आगे बढ़ता है। तो ये मूल रूप से ये युद्ध है, और उसमें दोनों में टकराव होता है। टकराव केवल व्यक्ति का नहीं होता है, व्यक्तियों का टकराव प्रारंभिक दिनों में होगा, धीरे धीरे ये टकराव बढ़ता जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जो विकास की धारा, एवोल्यूशन की धारा, वो तो एक पर नहीं रुकती है। कुछ पायोनियर्स होते हैं, उनको लोग प्रारंभ में सिरफिरा कहते हैं। आप देखिए, किसी भी अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देखें तो विज्ञान और रिलीजन का जो टकराव हुआ, तो प्रारंभ में तो गैलीलियो को उन्होंने जेल में डाल दिया, और कई इस तरह की डार्विन को तो बहिष्कृत कर दिया समाज ने, लेकिन धीरे राइट बंधुओं के साथ भी यही हुआ। लेकिन धीरे धीरे अब वो मेन स्ट्रीम में आ गया है, और जो लोग अब इन बातों को मानते हैं जिनके विरुद्ध ये लोग खड़े हुए थे, तो उनको अब माना जाता है कि ये अंधविश्वासी हैं या ये पुराने ख्याल के हैं। तो यही चीज़ समाज में हर बार होती है कि पहले कुछ लोगों में ये बर्बाद ये 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 परिवर्तन आता है, जिनको श्री अरविंद कहते हैं पायोनियर्स। इसकी सावित्री में भी चर्चा है। तो पायोनियर्स क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने ये एक छलांग ली है, ब्लेसेड आर दोज़ हू टेक ए लीप टुवर्ड द फ्यूचर। और ये तो निकल जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने को छलांग ले लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे ये जो परिवर्तन है ये समाज में, क्योंकि वो करंट है जो इवोल्यूशन का, लोक संग्रहार्थ ये शब्द यूज़ किया गया है गीता में, तो वो धीरे धीरे पूरे समाज में फैलने लगता है। और फिर समाज के अंदर जब परिवर्तन की बात आती है तो एक युद्ध शुरू होता है, एक संघर्ष शुरू होता है, और ये हर स्तर पे होता है, मनुष्यों के बीच होता है, मानव समूहों के बीच होता है, धर्मों के बीच में होता है, धर्म से मेरा मतलब है रिलीजन्स के बीच में होता है, राष्ट्रों के बीच में होता है जो एक प्रकार के मूल्यों के लिए खड़े होते हैं, और दूसरी ओर वे जो जो आगामी मूल्य हैं या वे जो सनातन सत्य सिद्धांत हैं जो कभी भी क्षय नहीं होने वाले हैं उनके लिए खड़े होते हैं, और इन दोनों के बीच कभी कभी ये टकराव बहुत भीषण हो जाता है, भौतिक स्तर पे आ जाता है। और भौतिक स्तर पे वो इसलिए आता है क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जब तक इंसान के मन में है कुछ चीज़ें चल रही हैं, स्वप्न जगत में चल रही हैं, तब तक लोग उससे थ्रेटेंड नहीं फील करते हैं, वो कहते हैं साम्राज्य तो मेरा है इसका एक, जब तक मीरा बाई अपना चुपचाप बैठ के राणा जी के मंदिर में कृष्ण जी का नाम लेती थी तो कोई समस्या नहीं थी, ये उनकी लोग ऐसे कहते हैं ये तो सिरफिरा है व्यक्ति कोई बात नहीं है, लेकिन जब वो भौतिक में उतरने लगता है तो भौतिक जगत चूंकि पूरा का पूरा वो निश्चेतना से निकल रहा है, सबसे कठिन जो पकड़ है निश्चेतना की और पास्ट की जो फोर्सेस की वो भौतिक जगत पर है, इसीलिए माँ इतना जोर देती हैं। अब अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो कई वृत्तियाँ हैं जो मन से निकल जाएंगी, प्राण से निकल जाएंगी, लेकिन वो शरीर को ऐसा पकड़ के रखती हैं क्योंकि हमारी नर्व सेल ये सब डिजाइंड है। आप अंदर से बहुत सुंदर किसी ने सुना कि शांति रहनी चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर कोई अचानक कुछ आपको कह देता है आप शब्द, तो हृदय के अंदर एक भाव आता है क्रोध, क्योंकि हमारी नर्वस सिस्टम वैसे डिजाइंड है। तो भौतिक स्तर तक जब तक ये चीज़ें नहीं आती हैं तब तक लोग इसको एक एनोमली एबनॉर्मेलिटी या यहाँ तक कि पागल करार करके छोड़ देते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें भौतिक स्तर पे आने लगती हैं तो वो एक प्रकार का, और वो कैसे आती है भौतिक स्तर पर, जब समाज के ही अंदर से ऐसे अंश हैं जो विद्रोह करते हैं, और जब वो विद्रोह करते हैं तो पुराना जो जगत है, जो पुराने रीति रिवाजों को, वे ऑफ लाइफ को, रीति रिवाज से मतलब कोई विशेष जाति धर्म की बात नहीं है, लेकिन ओल्ड वे ऑफ लाइफ, वो रेजिस्ट करती है, तो फिर वो युद्ध कई बार वो बिल्कुल बाहरी रूप ले लेता है। और इसका उदाहरण देते हैं श्री अरविंद फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। आप देखिए भारत का भी एक समय था जब इम्पीरियलिज्म को बहुत ही प्रश्रय दिया था प्रकृति ने, और क्यों ये प्रश्रय दिया था, क्योंकि इम्पीरियलिज्म की एक हवा बह रही थी। अब वो हवा इसलिए बह रही थी क्योंकि यही एक तरीका था मानव को एक सूत्र में बांधने का। तो बहुत सारे कुछ एक कल्चर्स थे जो स्ट्रांग थे, पावरफुल थे, वो एक राष्ट्र से राष्ट्र उस समय माने नहीं जाते थे, तो वो एक जगह से दूसरे स्थान पर आते थे, कैप्चर करते थे, लूटमार होती थी, परिवर्तन आता था, एक आरोपण होता था एक कल्चर का दूसरे कल्चर पर, एक दूसरे को इस प्रकार से कोई नई सभ्यता का टकराव होता था, उसके बाद फिर इधर से लोग जाते थे, तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन आप देखेंगे श्री अरविंद के आने के साथ साथ इस प्रक्रिया में, क्योंकि अब राष्ट्र की आत्मा होती ये भाव जुड़ गया, तो जब राष्ट्र की आत्मा का भाव जुड़ गया तो इम्पीरियलिज्म के विरुद्ध बहुत सारे राष्ट्र 1900 में अगर हम देखें तो खड़े हुए, और वो लेट 1800 से खड़े हुए, लेकिन वो करते करते अंत में अब इम्पीरियलिज्म नहीं है, अब ये इम्पीरियलिज्म आने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन अब जब वो आने की चेष्टा कर रहा है तो सारे राष्ट्र उसको धिक्कार रहे हैं और स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और वो किस तरह से आ रहा है, कमर्शियल इम्पीरियलिज्म कि हम डिक्टेट करेंगे, यूनिपोलर वर्ल्ड कि हम चाहते हैं चीज़ें ऐसी चलें, ये पुराने जगत के लिए ठीक थी, लेकिन अगर हम इसको मॉडर्न में एक वर्ल्ड स्टेट बनाने की चेष्टा करेंगे तो वो टकराव होगा, और ये टकराव इस हद तक जा सकता है कि एक बड़ा राष्ट्र या दो बड़े राष्ट्र वर्सेज मैनी मैनी डिफरेंट कंट्रीज जिसको कहा गया मल्टीपोलर, इन दोनों के बीच में टकराव हो जाए, क्योंकि आप अब उन चीज़ों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग होती है ये चीज़ें कि वही अमेरिका जो एक समय देखा जाए तो वो एलिट पावर्स के साथ खड़ा था, लेकिन अगर वो ये बात को नहीं समझ पाता है कि अब समय काल की गति बदल गई है, और वो अगर एक नई प्रकार की इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइन लेकर के आएगा तो वही राष्ट्र जो एक समय उसके साथ खड़े थे अब उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से युद्ध की ये भूमि है, पृष्ठभूमि है, और भौतिक स्तर पे ये इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि अल्टीमेट जो विक्ट्री है, जो भगवान का विधान है और भगवान की जो भगवान की जो शक्ति है उसकी जो अल्टीमेट विजय वो तो भौतिक जगत पे है। जब तक वो भौतिक जगत पर विजय नहीं होती, जिसके कारण रूपांतरण नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, तब तक वो केवल स्वप्न में है। जैसे हम लोग बड़े अच्छे आइडियल कंसीव कर लें, बड़े अच्छे हमारे पास भाव हों, लेकिन अगर हम उसको व्यवहार में नहीं ला पाएं, बहुत से लोग हैं जो आजकल मैं देखता हूं उनके अंदर ये समस्या होती है, अंदर से उनके अंदर एक आध्यात्मिक उन्नयन हो रहा है, वो बिल्कुल निश्चित रूप से दे आर स्पिरिचुअल, लेकिन अब जो पुराना जगत है वो एक रिलीजियस टेंडेंसी में, रिचुअल्स में, एक वे ऑफ लाइफ में उनको बांध के रखना चाहता है। अब ये बच्चे कई बार वो रिवोल्ट करते हैं, कई बार वो दिशा, वास्तव में वो दिशा ढूंढ रहे हैं, और उनसे जब इंटरेक्शन होता है तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट प्रारंभ हो गया है। उनके जो प्रश्न हैं और उनके अंदर जो उत्तर हैं, उनका जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, अगर हम थोड़े उदात्त दृष्टि से देखें तो ऑलरेडी ये आगे की भविष्य की संतानें हैं, लेकिन जो पास्ट है वो इसको पकड़ करके रखता है। तो इस पृष्ठभूमि से हम युद्ध को समझते हैं। अगर टिपिकल एग्जाम्पल तो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जिसमें हम देखते हैं कि वही लोग, वो सारी चीज़ें जो एक समय सही थी, उचित थी, जो उस युग की उच्चतम संभावनाएं थी, जिसको हम देखते हैं भीष्म में, द्रोण में, इन सब के अंदर जो प्रकट होती हैं, कर्ण में, अश्वत्थामा में, इन सब के अंदर जो प्रकट होती हैं, वही चीज़ें अब विरोध में आ जाती हैं एक नए युग के प्रारंभ में। और इस जब नए युग में प्रवेश करते हैं तो दोनों के बीच टकराव होता है। अब अगर हम इस भूमि से, इस दृष्टि से देखें तो हम देखते हैं कि युद्ध कई कई स्तरों पर लड़ा जाता है और कई प्रकार से लड़ा जाता है। तो जो उसकी सबसे सूक्ष्म भूमि है युद्ध की, तो वो तो हमारे पुराणों में बड़े सुंदर ढंग से देवासुर संग्राम, वेदों में भी है। तो ओरिजिनल जो चीज है, देव कौन है, वो प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है। जो एक समय उचित था वो दूसरे समय अनुचित हो जाता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को एक नए प्रकाश में देखते हैं। और इसको समझने का एक बड़ा सिंपल सा दृष्टिकोण है प्रैक्टिकल लाइफ में। कई बार लोग मन से आध्यात्मिक चीज़ों को समझने की चेष्टा करते हैं। अब मन का प्रकाश, उसकी अपनी एक उपयोगिता है। कई चीज़ों को मन ने समझाया है, आधुनिक विज्ञान में जो निकली हैं, जिनको मन ने समझने की चेष्टा की है, लेकिन वही मन का प्रकाश असमर्थ हो जाता है जब उसके आगे जाना है। तो लोग जब प्रश्न करते हैं कि हम इसको अभी मन के लेवल पर नहीं समझ पा रहे, तो आप नहीं समझ पाओगे, आप कितना भी मन को फेट नहीं करो वो नहीं समझ पाओगे। तो प्रयास क्या करना है, मन के आगे एक हायर लाइट को, एक ग्रेटर कॉन्शियसनेस को अपने अंदर धारण करना है। तो जब वो नया प्रकाश आता है तो हम चीज़ों को एकदम नए दृष्टि से, नए हमारे अंदर सब कुछ बदल जाता है और हम चीज़ों को नए ढंग से समझ पाते हैं। तो उस तरह से जब हम देखते हैं जीवन को, तो हम देखते हैं कि ये युद्ध प्रारंभ कहाँ होता है, ये देवासुर संग्राम वही है कि वह जो कुछ हमको पास्ट की ओर खींचता है और जो हमको जड़ तत्व से बांध के रखना चाहता है, जो चीज़ हम लोगों को पूरी तरह निश्चेतना की ओर ले जा रही है, पीछे की ओर खींच रही है। और दूसरा देवत्व क्या है, देवत्व वह एक प्रकाश की वृद्धि, चेतना की वृद्धि, जो आगे की ओर हमको ले जाना चाह रही है। तो ये सूक्ष्म भूमि पर ये युद्ध चलता है। इस युद्ध में कभी कभी संधि होती है, सुलह होती है, जो हम देखते हैं कि सागर मंथन की पूरी कथा में, और फिर उसके बाद फिर एक चेंज आता है। तो ये एक भूमि है जो एकदम इसकी सबसे सूक्ष्म भूमि है। इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि विश्व चेतना में ये काम होता है, ये देवासुर संग्राम। लेकिन उस विश्व चेतना में संग्राम होने के पहले एक और उसकी भूमि है, जहाँ युद्ध नहीं है, लेकिन जहाँ से वो परिवर्तन का संकल्प आता है, वो परात्पर, जो हम वी कैन से ट्रांसेंडेंट, जहाँ से एक प्रकार का आदेश आता है कि अब चीज़ों को बदलना है। इसको शेरविन बड़े सुंदर ढंग से इलियन में समझाते हैं कि इलियन के युद्ध के बारे में वो बताते हैं। अब देखिए प्राइम जो है, पूरा जो ट्रोजन वार है, उसमें जो सारे जो लोग हैं उस समय ट्रॉय में, बड़ी एक विकसित सभ्यता है, बड़े कल्चर्ड हैं, रिफाइंड हैं, और वहीं ग्रीक की छोटी छोटी, ग्रीस तो था नहीं उस समय, ट्राइब्स थी। ग्रीस अभी भी दे डोंट लाइक कि उनको कोई ग्रीक बोले, उनको अच्छा नहीं लगता है, वो अपने आप को हेलास कहते हैं, क्योंकि वो जो परिवर्तन आया था उनके अंदर वो ट्रॉय के युद्ध के बाद आया था। तो अब बड़ा सुंदर है, शेरविन उसको प्रारंभ करते हैं कि देवताओं के बीच में ये वार्तालाप हो रहा है, और देवताओं के बीच में जब वार्तालाप हो रहा है तो सियूस ये निर्णय लेते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि अब ये परिवर्तन आना है, और वे जो पुराने देवता हैं वे चले जाएंगे जिनको जिनकी पूजा होती थी उनकी जगह अब ये नए देवता आने वाले हैं। अब ये नए देवता कौन है, जैसे एथने तो वो हम कहें अगर महेश्वरी तो वो आने वाली है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, हम अगर वेदों से लेके पुराणों तक देखें तो वहाँ हम देवताओं का भी चेंज देखते हैं कि वही इंद्र जो वेदों में एक रूप में है वही पुराणों में एक अलग रूप में आ जाते हैं। तो ये सब कुछ यानी देवता यानी कि मनुष्य की मान्यताएं, उसके अंदर जो प्रकाश का जो स्तर है, जैसे वो समझता है चीज़ों को। तो कई रिलीजन्स तो इसीलिए समाप्त हो गए। अगर हम देखें कई बार लोग रिलीजन्स को लेके बहुत परेशान होते हैं, तो बढ़ते प्रकाश में चीज़ें स्वयं समाप्त हो जाएंगी। अगर आप इजिप्ट का देखें तो इजिप्ट में 3500 वर्ष तो कम से कम जो इजिप्शियन रिलीजन था रहा, और उसमें बहुत कुछ था, ऑकल्ट था, उसमें स्पिरिचुअल डायमेंशन था, हालांकि ऑकल्ट बहुत ज़्यादा था, और वो सारा समाप्त हो गया, विलुप्त हो गया, कई लोगों को मालूम भी नहीं है। तो कई रिलीजन्स हैं जो अभी 1000-2000 साल ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके बाहरी रूप समाप्त होंगे ही होंगे, उसकी जगह नई चीज़ें आएंगी। तो ये प्रारंभ वहाँ से होता है जहाँ वो कॉस्मिक विल, और कॉस्मिक विल कहाँ से आती है, ट्रांसेंडेंट विल। और ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस चीज का निर्णय वहाँ हो जाता है, माता जी की एक 1955 जनवरी की एक उसको भविष्यवाणी कह लें या न्यू ईयर का मैसेज कह लें, नो ह्यूमन विल कैन फाइनली प्रिवेल अगेंस्ट द डिवाइन विल, पुट योर सेल्फ डेलिबरेटली ऑन द साइड ऑफ द डिवाइन एंड द विक्ट्री इज सर्टेन। इसी चीज को हमारे यहाँ महाभारत में जो चुनाव है, अर्जुन चुनते हैं श्री कृष्ण को, क्योंकि उनको पता है कि श्री कृष्ण भविष्य का पक्षधर है। इसको कई लोग नहीं समझ पाते हैं, उस समय भूरी शवा नहीं समझ पाते हैं, और भी कई लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं। तो वही हम देखते हैं कि इलियन में जब वार्तालाप हो रहा है, देवताओं को भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये सब उनके अनुयायी थे, पोषित होते थे उनसे, और जब वो कहते नहीं अब तुम लोगों को अपनी शक्ति को उनसे खींच लेना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप देखिए कि कैसे एक एक रिलीजन होता है जो एक समय पॉलिटिकल पावर के अंदर बड़े से बड़े मतलब राज्यों पर, अब वो राष्ट्र हैं उन पर कैसे वो कब्जा करता है। अब वो इतना शक्तिहीन होता जा रहा है, इतना क्षीण होता जा रहा है कि वो अपने ही उसमें सिमट करके वहीं पर उनके आपस में लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये जब ऊपर से शक्तियां छीन ली जाती हैं तो आप नहीं आगे चल सकते हो। इसको बहुत सारी कथाएं हमारे यहाँ राम रावण की कथा में, रामायण में, सब जगह इसका उल्लेख मिलेगा कि ये निर्णय युद्ध में कौन विजयी होगा ये निर्णय मनुष्य नहीं करते हैं, मनुष्य केवल यत्र हैं। तो फर्क बस इतना है कि हम किस तरफ अपने आप को डालते हैं। हम अगर पास्ट के साथ खड़े होते हैं तो ये नहीं कि चूंकि हमने भगवान की पूजा की है तो पास्ट हमारे साथ हमारी विजय होगी, नहीं होगी। और यदि हम अपने को भविष्य की ओर, कुछ लोग हैं जिनके हृदय में भविष्य का भाव जाग जाता है, वो क्यों जागता है, वो भी भगवान जगाते हैं। ये बात माता जी अपने वॉल्यूम 2 में एक बड़ा सुंदर कि एक सिविलाइजेशन जो एंड हो रहा है, और अब ऑरोविल को अगर हम देखें तो भविष्य का भाव जगाने के लिए माने वो बनाई हर फील्ड में भविष्य का भाव, रीचिंग आउट टू द थॉट ऑफ द फ्यूचर। तो कुछ लोग हैं जिनके अंदर, अब इसको एक ही शब्द है, भगवान के हेतु की कृपा के कारण वो भविष्य का भाव जाग जाता है। तो भविष्य का जिनमें भाव जाग जाता है तो वो फिर स्वाभाविक है कि वो भविष्य के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और पास्ट कितना भी प्रबल क्यों ना हो, कितनी भी उसमें 18 अक्षौहिणी सेना हो, आधा संसार खड़ा हो, लेकिन वो निश्चित रूप से विनाश की ओर जाएगा, क्योंकि अब उसमें से स्वयं जगत जननी माँ ने अपनी शक्ति को खींच लिया है, और चूंकि वो खींच लेती हैं वो धीरे धीरे निर्बल होता हुआ वो धीरे धीरे एकदम, जो कहानी है श्रृंगी ऋषि की, जब डिवाइन मदर अपनी शक्ति खींच लेती हैं तो वो केवल एक डस्ट के रूप में, एक मिट्टी के ढेले के रूप में नीचे गिर जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है, यही हम सेकेंड वर्ल्ड वार में देखते हैं। अब हिटलर जिसकी बात हुई, हिटलर को क्यों, अब और देखिए कई बार ये बड़े डायबोलिक रूप में आता है। हिटलर की समस्या क्या थी, हेरन वॉक क्या है कि भाई हम एक सुपीरियर रेस हैं। तो अब देखिए अब संसार में क्या हो रही है, संसार में रेसिज्म के विरुद्ध, अब व्यक्ति उसको समझे या ना समझे, लेकिन रेसिज्म के विरुद्ध एक मानव मन के अंदर एक भाव आ गया है कि हम रेसिज्म को स्वीकार नहीं करेंगे। तो अगर आप इस समय रेसिस्ट टेंडेंसीज लाएंगे कि हम तो ब्राह्मण हैं या हम तो बहुत सुपीरियर जाति के हैं, तो ये अब सपोर्टेड नहीं होगा। अब ये नहीं कि हायरार्की नहीं एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस रूप में नहीं एग्जिस्ट करती है जिस रूप में हायरार्की, इवोल्यूशन की हायरार्की है। एक जगह माँ इसको बड़े सुंदर ढंग से समझाती हैं, वॉल्यूम 3 में उनकी है, कि ट्रू ओरिजिन ऑफ रेस सुपीरियरिटी, ट्रू ओरिजिन क्या है रेस सुपीरियरिटी की, जिनकी चैत्य सत्ता विकसित है। वो सुपीरियर काइंड है, लेकिन वो कभी भी नहीं जाएंगे कहने को कि हम सुपीरियर हैं, क्योंकि उस सुपीरियरिटी की सेंस के जो सेंस नहीं होती सुपीरियरिटी की, लेकिन वो सच में जो उनका आत्मविकास होता है तो विनम्र हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बात भी कई बार लोग कहते हैं ज्ञानी की पहचान क्या है, तो ज्ञानी की पहचान ये नहीं कि उसने कितनी किताबें पढ़ी है, उसका कितना छत्र लेके लोग घूम रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ स्वागत हो रहा है, नाम के आगे 108 बार या 1008 बार लिख दिया गया है और वो मसंत पे बैठ करके मालाएं हैं, नहीं, ये ज्ञानी की पहचान नहीं है। ज्ञानी अति विनम्र होता है, और इसको अगर हम देखते हैं श्री अरविंद के साथ इतना अधिक स्पष्ट आता है। माता जी कहती हैं दो चीज़ें श्री अरविंद की, श्री अरविंद की करुणा और श्री अरविंद की विनम्रता, ह्यूमिलिटी, शोबिंदो ह्यूमिलिटी, मतलब वो जैसे बात करते हैं उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस से, जैसे वो मतलब डिसाइपल्स आश्चर्य होता है कि कैसे वो विनम्रता के साथ ऐसे उत्तर दे रहे हैं मानो उनके साथ आके। ये ज्ञानी की पहचान है, वो ये नहीं कह रहे हैं बच्चा मैंने कह दिया है मेरी बात सुननी जरूरी है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ये अथॉरिटी का युग चला गया है, ये जो आने वाला युग है। ये सब हमें समझना है कि भविष्य के संकेत किस तरफ है, भविष्य में अथॉरिटी खत्म हो गई है, उसकी जगह क्या आ गई है, ऑथेंटिसिटी। अगर आप सच्चे हो तो भविष्य आपको स्वीकार करेगा, बच्चे आपको स्वीकार करेंगे, उनके पास वो आंखें अब आ रही हैं, वो आपके वस्त्र पहनावे पांडित्य से नहीं जाने वाले हैं, उनके पास कुछ ना कुछ है जिससे वो समझ पाते हैं कि भाई ये व्यक्ति सच्चा है, कहीं ना कहीं सच्चा है, और वे पाखंड को भी देख पा रहे हैं। एक बार माता जी से किसी ने पूछा कि इसको हम समकालीन बना रहे हैं कि ये युद्ध, देखिए ये टेंडेंसीज हैं, ट्रेंड्स हैं जो डिक्लेयर करेंगे अपने आप को। माता जी से एक बार किसी ने पूछा कि सुपर माइंड जब आएगा तो कौन सी चीज़ें हैं जो चली जाएंगी संसार से, तो माँ कहती क्यों, हर चीज़ अपनी जगह पर पहुंच जाएगी, पहले तो कहती है, फिर कहती है हाँ एक चीज़ चली जाएगी, वो है पाखंड, हिपोक्रेसी की बात करते हैं। अब देखिए आज के बच्चों को इससे बड़ी चिढ़ होती है पाखंड से। अब जेन ज़ी की प्रोटेस्ट, लोग कुछ भी कहें कि भाई ये मोबाइल या उसके कारण सब जगह हो रही है, और इसके बाद ये चीज़ें और बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं, क्योंकि वो अब नेपाल में उनकी अनरेस्ट का बाहरी कारण क्या था, कम से कम वो कहते तुम लोग कहते हो कि कम्युनिज्म आएगा, सोशलिज्म आएगा, राजाओं से बेहतर होगा और तुम लोग ध्यान रखोगे सबका, लेकिन तुम सब तो स्वयं पाखंड में लिप्त हो, तुम्हारे तो बच्चे वहाँ अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन संपत्ति है। तो ये जो बच्चे आ रहे हैं नई पीढ़ी के, इनके अंदर पाखंड के प्रति बहुत तीव्र संवेदना भी है और वो उसका विरोध करते हैं, तो वो घर घर में विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि जहां पे घर में श्री अरविंद की बातें होती हैं और बच्चे बिल्कुल विमुख हो जाते हैं, तो जब पूछने पे पता चलता है तो वो कहते हैं कि मैंने तो इनको देखा है, अपने माता पिता को, जो उसका कुछ भी नहीं जी रहे हैं, वो बस बातें करते हैं, आश्रम जाते हैं, उनके अंदर कुछ बदलाव नहीं है। तो ये एक ऐसे युग में हम जहां जी रहे हैं जहां केवल बातों का या बाहरी चोला पहनने का युग नहीं है, पाखंड समाप्त होने वाला है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ये जो हिटलर का पाखंड क्या था, उसका पाखंड ये था कि हम सुपीरियर रेस हैं, और सुपीरियर रेस किस आधार पर है, ठीक वैसे जैसे अभी अमेरिका कह रहा है कि हम इस आधार पर सुपीरियर हैं क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी इकोनॉमिक और सैन्य शक्ति है। हिटलर ने इसको एक दूसरा रूप दे दिया था, वो कहता है हमारा DNA सुपीरियर है, और शब्द जोड़ दिया था आर्यन जाति, कि भाई हम तो ओरिजिनल आर्यंस हैं जो गए थे भारतवर्ष वगैरह में, हमने ही किया था सारा, जिसकी थ्योरी अभी तक पढ़ाई जाती है, प्रोटो आर्यन लैंग्वेज इत्यादि, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा कि कैसे मिथ्यात्व को हमने बढ़ावा दिया है। इस मिथ्यात्व की जो पराकाष्ठा थी वो हिटलर था, और उसने वहां से ये बताया कि भाई हम सुपीरियर हैं, बाकी लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है जीवन का, क्योंकि ये लोग तो संसार को समाप्त कर रहे हैं, मैं ही हूं जो संसार को बचाऊंगा। आप देखिए कितना भयंकर भाव है, और इसकी बात नीचे भी करते हैं सुपीरियर रेसेस की। तो ये जो सुपीरियर रेसेस थी जिनको ये अधिकार हो गया, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो आसुरी सभ्यता में रावण इत्यादि, यही तो ये कहते थे कि नहीं हम क्यों स्पेशल है, क्योंकि मेरे पास सैन्य शक्ति है और मेरे पास इकोनॉमिक पावर है जिसके कारण मैं सबसे उत्तम हूं, ये प्रमाण है इसका। और वहां पर हम देखते हैं कि वनवासी राम के सामने वो कैसे गिरता है। तो ये जहां भी ये भाव आता है कि वो पुरानी सभ्यता क्या थी, प्राइड, ईगो पर बेस्ड थी। ईगो पर बेस्ड का अर्थ क्या है कि अगर मेरी बाहर में कोई ये बात मैं इसीलिए कई बार कहता हूँ कि हम लोगों को अपने कार्यक्रमों में ये गवर्नर और मिनिस्टर को नहीं बुलाना चाहिए, ये श्री अरविंद के नए जगत के अनुरूप नहीं है, क्योंकि ये नए जगत का प्रतिनिधित्व करते ही नहीं है, ये तो पुराने जगत के या कोई बहुत बड़ा मतलब हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन और इंडस्ट्रियलिस्ट सच में भक्त हो, वो भक्त की तरह आए, कोई भी आ सकता है। लेकिन जब हम मान सम्मान केवल इसलिए देते हैं क्योंकि उसके पास बहुत धन संपदा है या उसके पास पॉलिटिकल पावर है, तो हम वास्तव में वही पुराने जगत में जा रहे हैं, और पुराना जगत कभी भी नए जगत का इनिशिएट नहीं कर सकता है, वो तो उसे मिलावट लाएगा। और ये मैं बाय द वे कह रहा हूँ कि कई बार जैसे मुझे तो ये बहुत प्रिय है, रतलाम में भी जाके यही बात मैं करता हूँ कि जब ध्वजारोहण हो रहा है तो हम लोग क्यों करेंगे, बच्चे करेंगे। अभी हाल में भी मुझे कोई बता रहा था कि कहीं पर ध्वजारोहण की बात हुई थी, आई थिंक जम्मू की बात हुई थी, तो उसमें यही था कि भाई बच्चा करेगा। तो क्योंकि ये एक सिंबलिक जेस्चर है कि हमसे आगे जा रहा है संसार, संसार पीछे की ओर नहीं जा रहा है, विजडम है, सब कुछ है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो हम युद्ध को देखते हैं कि ये निर्णय तो इसका ऊपर होता है, फिर ये एक मेंटल भूमि पर आता है जहां आइडियाज का टकराव होता है, और ये आइडियाज का जो टकराव होता है जिसके कारण उसी के घर्षण और संघर्ष से नई चीजों का जन्म होता है, नई संभावनाओं का। इसका एक और उदाहरण देख लें कि कैसे शेरविन दिग्विजय कहते हैं, हेरेक्लिटस ने कहा है कि युद्ध और संघर्ष संसार की जननी है। ये हम लोग 100 साल अगर पीछे चले जाएं तो 1910-20 तक के डिकेड में अगर हम देखें तो ये मान लिया गया था कि मेटेरियल साइंस सब कुछ है और उसी के पास सारे उत्तर हैं, और रिलीजन जो है वो एक आउटडेटेड चीज़ है, भगवान केवल मनुष्य की कल्पना है, एक स्वप्न है, जिसकी बात सावित्री में बड़े विस्तार से की गई है। और यहाँ तक कि 1950 तक भी एक प्रकार से, और कई लोग तो उसके बाद भी ये मानते थे कि भाई साइंस इज एवरीथिंग। अब इन दोनों के बीच टकराव हुआ, ऐसा लगता था कि जैसे साइंस की विजय हो गई है, और ये जो रिलीजन वगैरह में मानते हैं ये तो ठीक है घर में, और उसी में हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर आ गया इत्यादि आ गया, मानो रिलीजियस और सेकुलर के अलावा कोई और वर्ड नहीं है, होना चाहिए स्पिरिचुअल, जिसमें दोनों का बहुत सुंदर संधि होती है। लेकिन खैर ये प्रारंभ ऐसे हुआ, दोनों के बीच में टकराव हुआ, युद्ध हुआ एक प्रकार से, और प्रारंभ में इस युद्ध में हम देखते हैं कि रिलीजन पूरी तरह पीछे, ना केवल पिछड़ गया, वो चला गया लगभग, अब रिलीजन उस सेंस में नहीं एग्जिस्ट करता है। लेकिन धीरे धीरे वो साइंस जो अपने को विजय के रथ उसका चल रहा था, इस टकराव के बाद कहीं ना कहीं विज्ञान के अंदर एक जिज्ञासा हुई कि इस भौतिक जगत के आगे क्या है। और जैसे ही उस जिज्ञासा का प्रारंभ हुआ, और भगवान की एक कृपा भी होती है, एक पीछे जो सुपर माइंड एक्ट करता है, तो धीरे धीरे विज्ञान ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर गया जहां वो अब जो बहुत ही पुरानी जो वेदांतिक सत्य हैं उनको, उनका वो प्रतिपादन करने लगा, ऐसी बातें कहने लगा जो लग रहा था कि सीधा हमारे उपनिषदों से ली गई हैं। तो कितना भी युद्ध हो जाए, सत्य तो कभी नहीं मरता है, केवल उसके बाहरी रूप। तो रिलीजन क्या था, बाहरी रूप था, वो चला गया, लेकिन उसके अंदर का जो सत्य था ना केवल वो निकला, विज्ञान ने ग्रहण कर लिया। आज अगर आप किसी वैज्ञानिक को पूछें, और कई लोगों से मिलना भी होता है, तो अगर आप उनको बोलेंगे बाहरी रूप में, वो उसको नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर आप उसको समझाएंगे कि एक, अब वो वेदांत नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे नॉन डुअल कॉन्शियसनेस। ये मेन स्ट्रीम विज्ञान में इसकी चर्चा होती है, चेतना क्या है, क्या वो मानव ब्रेन की उपज है या मुख्य चेतना मुख्य अवस्था है। बड़े बड़े नोबेल लॉरियट्स इसकी बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब वही विज्ञान ने इस चीज को स्वीकार किया। तो प्रारंभ कहां से हुआ, क्लैश से हुआ, विज्ञान और रिलीजन के बीच में एक युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम क्या हुआ, रिलीजन का जो बाहरी ढांचा है वो टूट गया, लेकिन उसका जो आंतरिक सत्य है वो तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और उसको विज्ञान ने स्वीकार कर लिया, और वहीं स्पिरिचुअलिटी ने साइंस को स्वीकार किया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो आज अब अगर हम देखें शेरविंद कितने दूरगामी दृष्टि से, अगर हम रिकॉर्ड ऑफ योगा देखते हैं, इस पर भी एक इशू बनेगा और उस पर बात होगी कि कैसे उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह हर चीज को स्टडी किया है, जिससे कोई भी चीज केवल एक विश्वास या मान्यता के आधार पर नहीं है। वो देख रहे थे कि जो नया युग आ रहा है उसमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों का समन्वय होने वाला है, और इसकी बात माने कही है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे हम समझते हैं। तो वो चर्चा अन्यत्र होगी, कभी और के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो ये फिर धीरे धीरे ये जो युद्ध है ये प्राण जगत पे उतरता है, जिसमें आइडियाज के टकराव के बाद प्राण की ऊर्जाओं का संघर्ष होता है, जिसमें जो पूरा जो एक जीवन शैली है। प्राण क्या करता है, आपको जीवन में चीजों को उतारता है। एक तो है विचार की भूमि पर हो रहा है, लेकिन विचार की भूमि पर आप मानते भी हैं तो भी आप प्राण की भूमि पर जब उस चीज को लाते हैं तो संघर्ष शुरू हो जाता है। आप उस चीज को जीवन में नहीं उतार पाते हैं क्योंकि मन की भूमि पर चीजें स्पष्ट हो गई, लेकिन प्राण वो एक जीवंत सत्ता है, उसने बहुत सारे सिस्टम्स बनाए हुए हैं और अंत में ये भौतिक स्तर पर आता है। ये सारे युद्ध माने अगर हम संक्षेप में कहें तो ऑलरेडी ना केवल लड़ लिए हैं, हम सबके लिए उसकी विजय प्राप्त कर ली है। ये हम पूरे मदर्स एजेंडा में ये देखते हैं। माँ इसी बात को लेती हैं कि बार बार मुझे जो विरोधी है वो यही कहता है, ग्रेट एडवर्सरी, कि ठीक है अंदर में सारे अनुभव हैं ये सब ठीक है, लेकिन इनको तुम जब तक अपनी कोशिकाओं में प्रकट नहीं कर देती हो, जब तक इनको तुम अपनी देह में प्रकट नहीं कर देती हो, तब तक मैं इसको नहीं मानूंगा। तो ये जो युद्ध है अब इस भूमि पर चल रहा है जहाँ इसको हम कह सकते हैं कि अब केवल आइडिया के लेवल पर भी है, आइडिया के लेवल पर अभी भी टकराव है, कई लोगों का टकराव है, पुराना युग और नया युग। और इसकी बहुत सुंदर वर्णन सीमा एक फिल्म देखते हुए करती हैं और वो फिल्म थी, आश्चर्य होगा कि श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवन पर एक फिल्म है जहाँ माँ वो कहती हैं कि वो सारा एक पुराना युग जिसमें वो मंदिर में पूजा हो रही है इत्यादि, और फिर वो देखती हैं कि ये जगत जा रहा है और एक नया जगत आ रहा है। तो एक और वो मन की भूमि पर कि अब एक सर्वव्यापक आध्यात्मिकता के भाव की ओर मनुष्य जा रहा है, जहाँ भगवान केवल एक स्थान पर भूमि पर या एक व्यक्ति विशेष या एक ग्रुप विशेष में सीमित नहीं है, वो निकल गए हैं, उससे विशाल हो गए हैं, जगह जगह पर सर्वव्यापी हैं, क्योंकि वही मूल सत्य है। फिर अब इसका प्राण के स्तर पर भी होगा, क्योंकि अगर कोई इस भाव से जीवन प्रारंभ करेगा तो देखिए कितनी बड़ी उसके जीवन में समस्याएं आने वाली हैं। और उसके बाद जब उस चीज को शरीर के स्तर पर प्रकट करेगा, और प्रकट होगा निश्चित रूप से आएगा, जिसके कारण शरीर की कई वृत्तियाँ टेंडेंसीज डेवलप होंगी, कई पुरानी पार्श्विक और आसुरी वृत्तियाँ गिरेंगी, उसकी जगह एक नई संभावनाएं प्रकट होंगी, तो स्वाभाविक है कि वो शरीर के स्तर पर कभी रोगों का रूप ले सकता है। तो ये युद्ध केवल ये नहीं कि बाहर एक गन पाउडर से लड़ा जा रहा है, शरीर के ऊपर भी इसके परिणाम होंगे, इसमें एक और कई नए रोग पनपेंगे। इसकी भी बात माँ कहती हैं कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस दोनों का शरीर के ऊपर एक प्रयोग हो रहा है। आज किसी ने यह प्रश्न पूछा फॉर एग्जाम्पल कि ये जो क्लाइमेट चेंज है क्या सुपर माइंड इसको ठीक कर देगा, तो मैंने कहा कि क्या पता ये सुपर माइंड का ही माध्यम है कि शरीर को एक नए शरीर की ओर मोड़ने का, क्योंकि हम जिसको कह रहे हैं कि ये ऊर्जा जो ओजोन लेयर इत्यादि कार्बन लेयर कार्बन का जो उसके कारण फुटप्रिंट्स हैं जिसके कारण जीवन के ऊपर एक दुष्परिणाम हो रहे हैं, यही चीज़ें क्या पता शरीर के अंदर से नई चीज़ें लाने वाली हैं। ये नहीं कि हमको कार्बन एमिशन करने चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है कि मनुष्य सचेत हो रहा है कि हाइपर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि एक नए ढंग से शरीर के ऊपर प्रयोग हो रहे हैं। और इसी कारण शायद इतनी सारे रोग आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि नया जगत आ गया तो रोग आ रहे हैं, क्योंकि पुराना जगत नहीं छोड़ रहा है और इसके ऊपर एक हायर स्पिरिचुअल और डिवाइन फोर्सेस भी इसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं, लेकिन मनुष्य भयभीत हैं। आप देखिए एक ओर बहुत सारे अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी ओर नई विधाएं मनुष्य को ठीक करने की अंदर से ही और ये चीज़ आ रही हैं। आज ही मैं किससे मिला जब वो बता रहे थे आज नहीं कल कि कैसे उन्होंने कहीं पर एक मर्मशास्त्री से मिल करके उन्होंने एक लगभग दुसाध्य रोग है तो दवाइयाँ बहुत कम हो गई और उसके द्वारा वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया। तो मैंने कहा निश्चित रूप से, क्योंकि ये नई विधाएं आएंगी हर क्षेत्र में आएंगी, तो आप इसको रिप्रेजेंट करने वाले युद्ध होंगे। लेकिन अब ये है, अच्छी बात ये है, गुड न्यूज़ ये है कि वो जो भयंकर संघर्ष होते थे जो हम देख चुके हैं टिल द सेकेंड वर्ल्ड वार, अब उस तरह के भूमिगत संघर्षों की संभावना कम है। और यदि हुआ एक निर्णायक युद्ध जिसको कहा जा सकता है बाहर पे, और वो इस कारण काम है क्योंकि अब सुप्रामेंटल तो एक एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, एब्सोल्यूट पावर है, उसके अंदर ये सामर्थ्य है कि वो चीज़ों को अंदर से बदले, और ये हम देख रहे हैं कि चीज़ें बदल रही हैं। इवन जो पाकिस्तान भारत के बीच में हम देख रहे हैं तो कई पाकिस्तानी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो महसूस करते हैं अपने हृदय के अंदर कि कहीं ना कहीं कि कितना अच्छा होता अगर हम एक होते, ये भाव कहीं ना कहीं उनके अंदर आ गया है। तो हो सकता है कि चीजें अंदर से बदलें। लेकिन अगर ये निर्णायक युद्ध, कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि ये कहीं यूक्रेन रशिया का, ये सब साइड के युद्ध हैं, ये निर्णायक युद्ध नहीं है, इनकी पूरी एक स्टोरी अलग है। युद्ध होंगे एक और वर्ल्ड स्टेट की ओर मनुष्य कदम बढ़ाएगा, ठीक जैसे यूएनओ लीग ऑफ नेशन, जहां कुछ राष्ट्र, एक या दो राष्ट्र कंट्रोल करना चाहेंगे पूरे विश्व को, और वही मल्टीपोलर वर्ल्ड, इन दोनों के बीच में एक युद्ध की संभावना है। और वो युद्ध बहुत ही भयानक होगा क्योंकि यह पूरे विश्व को चपेट में ले लेगा, और आशा की जाती है कि सेंस आ जाएगी और ये चीज नहीं होगी। और निर्णायक युद्ध यदि कोई होता है भौतिक भूमि पर, तो इसकी बात सीमा ने स्वयं कही है कि जो लास्ट बैटल अगर होगी तो वो भारत की भूमि पर होगी। और अब ये युद्ध भारत पाकिस्तान का होगा या गृह युद्ध होगा, अगेन आशा करते हैं कि हम ऐसा कुछ ना हो। तो ये अरब इसराइल का युद्ध नहीं है, ये तो टेस्टिंग ग्राउंड है असुर के, कि किस हद तक वो मनुष्य को भ्रमित कर सकता है, ये टेस्टिंग ग्राउंड है। और लेकिन जब इसका होगा, अगर कोई आवश्यकता पड़ी, मान लो मनुष्य अंदर से नहीं बदल रहे और बहुत ही हार्डकोर रेजिस्टेंस है जिसके कारण बहुत सारे समस्याएं हो रही हैं, आगे का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, तो ये संभव है कि एक प्रकार का युद्ध हो भारत की भूमि, भारत पाकिस्तान के बीच, या इसके अंदर गृह युद्ध की संभावना, श्री अरविंद ने इसको कहा भी अपने संदेश में, या एक व्यापक युद्ध जो मल्टीपोलर वर्सेस यूनिपोलर वर्ल्ड के बीच में हो, वर्ल्ड स्टेट जिसकी बात होती है। अगेन आशा करते हैं कि ये ना हो। तो युद्ध कब जाएगा, लोग युद्ध विराम, ये युद्ध विराम का कोई अर्थ नहीं है, ये एक ब्रीदिंग, वो कहते हैं ना बीच में, जैसे शाम को युद्ध बंद हो जाता था सुबह शुरू हो जाता था, ये उस तरह की चीज है। क्यों नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर वृत्ति नहीं बदलेगी, युद्ध का कारण ही यही है कि भगवान अब मनुष्य को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं, और यदि उसके अंदर की जो वृत्तियां हैं युद्ध की, युद्ध क्या होता है कि जो ईगो पकड़े हुए एक पुरानी जीवन शैली को, उसके अंदर प्लास्टिसिटी नहीं है, चेंज नहीं आ रहा है उसके अंदर, वो कठोरता से पकड़े हुए अपने अहंकार की जड़ों को, यदि मनुष्य इसका परित्याग नहीं करेगा तो आप कितना भी बाहरी युद्ध विराम करा दो, ये केवल एक क्षणिक रहेगा, ये केवल एक हमारी एक विश्वास रहेगा, या कई बार एक डिसेप्शन रहेगा, क्योंकि कई बार युद्ध विराम इसलिए किया जाता है ताकि हम जो असुर है वो करता है ताकि वो अपनी शक्तियों को संजो सके, देवता भी करते हैं, परंतु अगर हम सच में चाहते हैं कि युद्ध का विराम हो जाए तो हमको मनुष्य को बदलना है। इसीलिए जो लोग सच में चाहते हैं कि ये युद्ध समाप्त हो इस संसार से, तो एक ही मार्ग है, वो है हायर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, क्योंकि बिना उसके ये केवल एक सीसो बैलेंस, देवासुर संग्राम में यही चलता रहता है, कभी देवता जीतते हैं कभी असुर जीतते हैं, वस्तु तो अंततः देवता थोड़ा ग्राउंड गेन कर लेते हैं, क्यों, लेकिन अब माता जी ने इसका रूप बदल दिया है, वो अब देवासुर संग्राम की जगह वो अब असुरों को रूपांतरण की बात कर रही हैं, वो एक अलग चैप्टर है अपने आप में, उसमें हम प्रवेश नहीं करेंगे, और इसी कारण असुर का एक फ्री खेल भी आ गया है, और माने इसके प्रति हम सबको सचेत करके रखा है कि वो हो सकता है कि श्री अरविंद की वाणी को भी ट्विस्ट करके प्रेजेंट करने की चेष्टा करे, एक हार्डकोर रिलीजन के रूप में प्रकट करे। तो ये है कि अब जो भूमि पर ये युद्ध हो रहा है, लड़ा जा रहा है, अब चूंकि इसके सबसे गहरे कारणों को एड्रेस किया जा रहा है, सीमा इसके सबसे गहरे कारण की वो निश्चेतना को ही रूपांतरण, उसके जो चार असुर हैं उनके रूपांतरण की बात करती हैं, और जैसे जैसे ये असुर दो ने स्वीकार कर लिया बदलना, और एक ने डिसॉल्व करने की सहमति दे दी, तो और एक था जो खड़ा रहा, डटा रहा, पर माँ कहती हैं कि वो जानता है कि उसका भी अब अंत निकट है, इसलिए वो बहुत फड़फड़ा के अपने पंख उड़ा करके उड़ रहा है। तो ये पतंगे के पर आए हुए, तो उम्मीद ये करती कि होती है कि जैसे जैसे मनुष्य की चेतना का विकास होगा, वो ट्रू आध्यात्मिक विकास, अगेन आध्यात्मिक शब्द से हम कल्ट, सेक्ट ये सब जोड़ने लगते हैं कि जो लोग ध्यान कर रहे हैं बड़े आध्यात्मिक है, आध्यात्मिकता एक चेतना का परिवर्तन है, रूपांतरण है, जिसमें हम सब चीज़ों के प्रति हमारी दृष्टि बदल जाती है। मेडिटेशन वगैरह एक प्रोसेस है, मेथड है, अब वो उनके द्वार से आएगा, उनके बिना आएगा, एक अंदर के एटीट्यूड से आएगा, भगवान की कृपा से आएगा, वो उसको हमको अलग करके देखना चाहिए। तो जैसे जैसे मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा, वैसे वैसे स्वतः ही युद्ध बैकग्राउंड में जाता चला जाएगा, युद्ध की संभावना चली जाएगी। डेट ऑफ रुद्रा वुड हैव बीन पेड, डेट ऑफ रुद्रा क्या है कि ये अब तक जीवन के ये सृष्टि के विकास में संघर्ष एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता रहा है। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि जड़ तत्व को ये बताना कि कृपा से तुम बदल सकते हो ये असंभव है। वो समझता है नहीं, जब तक लड़ाई नहीं होगी तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। अभी भी कई लोगों की मानसिकता है कि जब तक हम लठ लेके नहीं खड़े होंगे तब तक कोई नहीं। पहले था, बच्चों के साथ लोग कहते थे दो थप्पड़ मारोगे नहीं तो ठीक नहीं होगा। थैंक गॉड अब ये बदल गई है। ये वही मानसिकता है, ये रुद्र का भाव कि भाई हम चीजों को तोड़ फोड़ के, क्योंकि वो जड़ तत्व की बहुत ही जड़वत मानसिकता थी। ये है रुद्र का काम, जिन्होंने तोड़ा है उस चीज को और आवश्यक था, लेकिन अब वो चूंकि उन्होंने तोड़ा है और इसमें असुरों ने बड़ा सहयोग दिया, तो अब असुर कहते हैं ये धरती तो हमारी है, हमने ही इसको बनाया है। और देवता कहते हैं अब हाँ ठीक है, तुमने पत्थर डाल दिए, नींव खोद दी, लेकिन भवन तो हमें बनाने दो, क्योंकि सौंदर्य बोध हमारे पास है, आर्किटेक्ट हमारे पास है। तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो डेट टू रुद्रा वही है कि हमारी जो पुरानी वृत्तियां हैं जिसमें बहुत अधिक एंगर है, वायलेंस है, ये सारी चीज़ों को अब टर्न करना है। माँ कहती बड़े सुंदर ढंग से, एक ड्रीम जो है माँ का उसमें कहती हैं, वे जो हमारी वृत्तियाँ जो युद्ध में संलग्न होती थी, कई चीज़ें उसमें बताई हैं, उनको क्यों ना हम अंदर की ओर मोड़ें और अपने ही ऊपर आत्मजयी बने। तो जैसे जैसे एक एक मनुष्य आत्मजयी बनता जाएगा, कोई आवश्यक नहीं है कि नाम के आगे वो स्वामी जोड़े, ना जोड़े तो अच्छा है, नहीं तो और अहंकार आ जाता है। तो वो जैसे जैसे आत्मजयी बनता जाएगा वैसे वैसे हर एक ऐसा व्यक्ति अपने वातावरण में इस चेतना का प्रसारण करेगा, वैसे वैसे वो पूरे आसपास के लोगों में, समाज में परिवर्तन आएगा और धीरे धीरे मनुष्य आत्मजयी बनने की तरफ उसका विकास होगा और सच्चे शब्दों में आर्य बनेगा, क्योंकि आर्य तो पहले स्वराज को स्थापित करता है तब साम्राज्य की बात करता है। तो यही आशा है, यही मंगल कामना है और यही सीमा श्री अरविंद का दर्शन है कि युद्ध निश्चित रूप से एक ना एक दिन तो समाप्त होगा, लेकिन ये तब समाप्त होगा जब मनुष्य का अंदर में रूपांतरण होगा। उसके बिना जो कुछ भी हम कर लें, प्रयास कर लें, बड़े वेल मीनिंग प्रयास कर लें, वार्ता से कोई चीज नहीं सुलझने वाली है, परिवर्तन से चीजें सुलझेंगी। जय मां।
बहुत बहुत आभार प्रिय आलोक भैया, अभी बहुत सुंदर तरीके से बड़े इस रोचक विषय को अपने सारगर्भित व्याख्या आलोक भैया ने प्रस्तुत की, और मैं आह्वान कर रहा हूँ प्रश्नों का कि अगर हमारे साधकों के पास कोई प्रश्न हो तो वे आलोक भैया से करें ताकि हम सब उसके सहभागी हो सकें, उन शंकाओं के सहभागी हो सकें। भैया ने भी बहुत अच्छा कॉस्मिक व्हील की बात कही और ये कहा कि आइडियाज का टकराव होता है और आत्मजयी बनने के बाद बहुत सुंदर बात कही। भैया एक प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ?
हाँ, बताइए।
मेरा प्रश्न है कि जैसे युद्ध जो है वो राजनीतिक परिवर्तन में या सामाजिक परिवर्तन में या युग परिवर्तन में कहते हैं बड़े प्रभावित होते हैं, मैं इसको थोड़ा लंबा इसलिए कहूंगा कि क्या वो वैयक्तिक विकास में भी उतने ही प्रभावी होते हैं? क्योंकि आमतौर पर युद्ध, चलिए गृह युद्ध हो गया, दो व्यक्तियों के बीच युद्ध हो गया, उसे युद्ध बोलते हैं, झगड़ा है, लेकिन जब राष्ट्रों का टकराव होता है जैसे कि कैसियस क्ले या मोहम्मद अली जो बल्लेबाज में हुआ कि अमेरिका वियतनाम से लड़ रहा था और उसने स्वीकार नहीं किया कि वो गलत उसके देश के लिए लड़ा जा रहा है, तो उसकी अंतरात्मा ने उसको स्वीकार किया। ऐसे ही मैंने एक फिल्म भी देखी थी कि मोर्चे पर सैनिक है, महसूस करता है कि नहीं नहीं शांति होनी चाहिए, हमारा देश गलत उद्देश्य के लिए लड़ा। तो क्या युद्ध उस हालत में इनको पनिशमेंट मिला और ये क्यों चले?
हाँ, बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये वार्ता को पूर्ण करता है। तो इसमें माता जी ने एक बड़ा सुंदर, उनके वॉल्यूम 2 में इसकी बात है कि स्कूल्स, वार्स आर स्कूल्स ऑफ करेज। तो व्यक्ति का विकास युद्ध के दो तरह से होता है, एक व्यक्तिगत विकास, तो जब हम युद्ध लड़ते हैं और उसमें हम अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, तो जब हम अपने आप को बलिदान करते हैं तो एक प्रकार से हम अपने ईगो के दायरे से बाहर निकलते हैं, और जब हम ईगो के दायरे से बाहर निकलते हैं तो एकदम आत्म बलिदान की जो भावना है उससे हम पूरी तरह ये हमें हमारे अंदर करेज शिवैलरी, और ऐसा कहा गया है कि जो लोग युद्ध लड़ते हैं वो जिनकी जिनकी गति होती है, वीर गति होती है, उनके लिए तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है युद्ध का, ये निश्चित रूप से व्यक्ति के विकास में है। तो शांति होनी चाहिए, वो एक अच्छी बात है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो कठिन अवस्था में सोल्जर खड़ा हुआ है। वो तो भाई उसके लिए तो देखा जाए तो शॉर्टकट खुला हुआ है। अब माता जी इसकी बात अपनी वॉल्यूम 2 में बड़े सुंदर ढंग से बताती हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो आहत होते हैं, जो फ्रेंच सोल्जर्स की वो बात करती हैं जो निश्चित रूप से सही दिशा में लड़ रहे थे, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि इवन जो इसकी बात शेरविन ने उनके लिए भी कही है, जो जिनको राष्ट्र ने युद्ध की विभीषिका में ढकेल दिया है, लेकिन उनका राष्ट्र के जो नेता है उनका मंतव्य अलग है। फिर भी तो जब माँ कहती हैं कि जब वो युद्ध की विभीषिका से लौट रहे हैं और वो जब देखती हैं सोल्जर्स को जिनके बहुत आहत हैं, घायल हैं, और माँ कहती हैं उनकी नेत्रों में मैंने एक चमक देखी जो स्पष्ट रूप से इसका संकेत दे रही है कि इस बलिदान के कारण वे नए जगत के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब ये एक देखा जाए तो शॉर्टकट है। एक लेवल पर जो व्यक्तिगत उसका विकास होता है वो है वार्स आर स्कूल्स ऑफ करेज। आई थिंक प्रारंभ में आपने ही सुनाई ना वो दिनकर जी की वो कविता कांश कि या तो भागा होगा रण से। तो ये रण को हम कैसे अवॉइड करेंगे, चाहे वो व्यक्ति के जीवन में हो संघर्ष या सामूहिक स्तर पर हो। तो शांति की कामना करना बहुत अच्छा है, लेकिन शांति जब होती है तो क्या होता है, मनुष्य एक अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है और उसी को वो अंत समझ लेता है, वो प्रगति नहीं करता है। सबसे बड़ी समस्या शांति की क्या होती है, जब जीवन बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है, खाना पीना आपको मिल रहा है, जीवन में सब सुख है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जिसको कहते हैं तो हम कहते तो हैं भगवान की कृपा है, लेकिन क्या हमारे अंदर अभिप्सा आती है आगे बढ़ने की, नहीं आती है। तो इसलिए युद्ध आता है। तो युद्ध जब आता है तो मनुष्य के माथे मस्तिष्क में चर्निंग होती है। इवन इंडिविजुअल जो युद्ध में नहीं लड़ रहे हैं, एक तो है कि जो युद्ध की भूमि पर खड़े हैं साक्षात, उनके अंदर निश्चित रूप से वीरोचित गुणों का विकास होता है जो बहुत अद्भुत है। ये तो मैं भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ कि जब व्यक्ति, मतलब मैं युद्ध नहीं लड़ा हूं लेकिन युद्ध भूमि में गया हूं एकदम सामने तक, कि जब उसके अंदर देखता है कि वो एक ओर उसका व्यक्तिगत जीवन है, दूसरी ओर उसके राष्ट्र का जीवन है, और वो तैयार होता है कि नहीं ठीक है मैं उसका चुनाव करूंगा। आप सोचिए कि चेतना के अंदर कैसा एक्सपेंशन आ रहा है। वही सोल्जर अगर अपने गांव में होता तो क्या कर रहा होता, वो बिजनेस करके अपने घर परिवार को संभाल रहा होता। अब ये उसके लिए एक लीप है। तो ये बिल्कुल व्यर्थ नहीं है ये समझना कि युद्ध भूमि में जो जिनका बलिदान होता है राष्ट्र उनको देखता है नहीं देखता है, वो तो एक बात की बात है। हमारे यहाँ जो मान्यता है कि उनके लिए स्वर्ग के द्वार सीधा खुल जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। पर उसके साथ साथ अब देखिए, जब संघर्ष होता है तो लोगों की मानसिकताएं भी खुलती हैं, लोगों के अंदर ये आत्ममंथन चलता है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, आखिर इसके पीछे मुद्दा क्या है। अब यूक्रेन रशिया का वार ले लीजिए, एक और उसमें ये चल रही है कि नहीं हम लिबरल वैल्यूज़ के लिए, लेकिन अब लोग देख पा रहे हैं कि ये लिबरल वैल्यूज़ का तो एक केवल एक नाटक है, ये तो वास्तव में अमेरिका अपनी हेगेमोनी के लिए लड़ रहा है, नेटो कंट्रीज लड़ रही हैं, लोग देख पा रहे हैं। तो उनकी दृष्टि अब बदल रही है कि नहीं आप बाहर से क्या प्रोफेस कर रहे हो और अंदर में आपके सत्य क्या है। तो ये कई लेवल पर कई लोगों के अंदर ये आत्ममंथन चलता है। इंडिया पाकिस्तान युद्ध में भी अभी भी अगर आप देखें कि कई सारे जो पाकिस्तान के भाई बहन हैं उनके अंदर ये बात आती है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं हम इस तरह से, ये लोग ये क्यों लड़ाई कर रहे हैं, नहीं तो कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो अभी की अवस्था में तो युद्ध आवश्यक है व्यक्ति के लिए भी, राष्ट्रों का टकराव तो एक बात है लेकिन व्यक्ति के विकास में भी और समाज के अलग अलग भिन्न भिन्न पहलुओं के विकास में भी, उसमें भी दोनों में। मान लीजिए कोई दो रिलीजन्स हैं, वो अपनी कट्टरता के लिए, या कोई एक रिलीजन है जो कट्टरता के लिए लड़ रहा है, तो आज के समय में तो उसको पुशबैक होगा। तो लोगों के अंदर उस धर्म के अनुयायियों के अंदर निश्चित रूप से ये मंथन होगा। कुछ हैं जो और कट्टर हो जाएंगे, लेकिन कुछ हैं जिनके अंदर ये आएगा कि क्या ये कपड़े पहनने के ऊपर हम लड़ रहे हैं, कितने मूर्ख हैं हम। तो ये चीज निश्चित रूप से आएगी। तो व्यक्ति का, समाज का, छोटे छोटे समूहों का ये होता है विकास। अब ये है कि कुछ लोग और कट्टर हो जाते हैं, वो फिर विनाश के काल के गर्त में जाएंगे। तो ये हमको स्पष्ट होना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भैया, बहुत अच्छा उत्तर इसका दिया, बहुत कृतज्ञ हूँ मैं, क्योंकि आलोक भैया सैनिक रहे हैं और अपने अनुभव से जो उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ युद्ध स्थल पे थे तो चेतना का प्रसार हुआ जो गांव में रहते हुए अपने घर में रहते हुए नहीं चलता था। बहुत सुंदर, बहुत बदाबारी। और कोई आपके मन में प्रश्न हो साधकों के मन में तो कृपया अवश्य पूछे।
कुछ मैं भी कहना चाहूंगा।
हाँ जरूर
भैया, नमस्कार।
बहुत स्वागत सभी का। और एक दुविधा जो मेरे मन में चल रही थी, आज आलोक भैया के द्वारा दिशा निर्देश जैसे कि मिल गया कि किस राजनीतिज्ञ को बुलाएं, किसको ये करें, अब तो ऐसा लगता है कि वो दुविधा जो मेरे मन में चल रही थी और ये शिक्षा के अधिवेशन के बाद से ही चल रही थी, अब ये दूर हो गई। अब किसी भी राजनीतिज्ञ को, राज्यपाल को ये नहीं बुलाना है और किसी जो भी शिक्षाविद को खोज खाज करके लाना है। हम सभी का ये संकल्प होना चाहिए। मनोज भैया से इस विषय में मैं चाहूंगा कि अगुवाई करने का, मनोज भैया आप हमें मैंने बल दें कि हम अपने संकल्प पर दृढ़ रह सके। जय श्री
जय मा जय मा।
मेरा एक प्रश्न है,
माननीय विष्णु गोयल जी हमारे बीच में।
हाँ अवश्य अवश्य।
नमस्कार आलू, मेरा प्रश्न है कि संघर्ष और युद्ध में क्या अंतर है?
तो संघर्ष अगर हम कहें तो वो एक 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 अलग भूमि पर चलता है। सूक्ष्म भूमि पर जब चीजें चलती हैं तो वो संघर्ष कहलाती हैं, जिसमें टकराव होती है विचारधाराओं का या अपने ही अंदर अंतर्द्वंद होता है, तो ये संघर्ष है। ये संघर्ष अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। लेकिन जब ये भौतिक स्तर पर उतर जाता है तो वो युद्ध का रूप ले लेता है। तो एक लंबे समय तक चीजें अंदर चलती रहती हैं, ऊहापोह अंतर्द्वंद के रूप में, कई बार वो रिजॉल्व हो जाती हैं और बाहर भी मानव समूह के बीच चलती हैं जो रिजॉल्व हो जाती हैं। और जब वो नहीं, आप देखिए जैसे अब इसका क्लासिक एग्जांपल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें हम देखते हैं कि वो एक अंदर में लोगों के अंदर असंतोष पैदा हो रहा था, वो एक आंतरिक संघर्ष के रूप में जगह जगह ये चीज़ एक्सप्रेस हो रही थी। लेकिन वो संघर्ष जब एक एक लिमिट तक पहुंच गया तो उसने क्राइसिस का रूप ले लिया जो बाहरी युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई और उसमें शेरविंद का भी बहुत बड़ा योगदान था, शेरविंद की शक्ति थी उसके पीछे, और अंत में उसमें नेपोलियन का की जो भूमिका रही। उस सबके बाद में जो नई चीज़ निकल करके आई थी, जो गिफ्ट था, एक प्रकार से प्रसाद था भगवान का, वो था फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इसका पर प्रसाद मिला। लेकिन वो संघर्ष का रूप है जब वो अंदर चल रहा है, युद्ध है जब वो बाहर एकदम भौतिक भूमि पर प्रकट हो गया। तो इसका यह है कि सूक्ष्म भूमि को हमको हमेशा एड्रेस करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि उसके मूल कारण क्या है। अभी आप देखिए ना, इसराइल और हमास की बात चल रही है, एक एक उदाहरण के रूप में आप बाहर से एड्रेस कर रहे हो, उसके मूल में नहीं जा रहे हैं। अभी भी पॉलिटिशियंस उस बात को टच नहीं कर रहे हैं कि हमास के चार्टर में लिखा हुआ है, एक वैसे मैं बता रहा हूं कि जब तक ज्यूज रहेंगे तब तक हमारी क्यामत का दिन नहीं आएगा। अब आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे तो आप कितने भी आत्मसमर्पण करा लीजिए नए ग्रुप्स आ जाएंगे, क्योंकि आपको इसके मूल में जाना है। सोच में जो है जब तक वो नहीं बदलेगी तो वो कहीं ना कहीं युद्ध का रूप लेगा, यहां नहीं लेगा कहीं और लेगा।
और चलो भैया, और कोई प्रश्न हो और साथ पूछें। मनोज भैया आप हैं यहाँ पर, और साधकों से प्रश्न मध्य करता हूँ इस वक्त पे थोड़ा चाहे।
एक एक बड़ा सुंदर जिक्र आलोकी ने किया और वो ये कि आप घर के अंदर गृहस्थी में भी इनका संपर्क कई परिवारों से हुआ है, जिनमें ये मालूम पड़ा कि बड़े लोग आश्रम तो जा रहे हैं, किताब भी पढ़ रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो श्री महा श्री की शिक्षाओं का अभ्यास नहीं कर रहे। तो इस स्थिति में क्या युद्ध की जरूरत नहीं है अपने आप से?
बिल्कुल, और चल रहा है। कोई भी अगर सच्चे सत्यनिष्ठ व्यक्ति होगा तो वो अंदर के युद्ध से गुजरेगा ही, लेकिन समस्या सारी सिंसेरिटी की है। और वो अगर सत्यनिष्ठ नहीं है तो ठीक है, उसने मन से चीज़ों को पकड़ लिया और ये यहाँ से वहाँ से, लेकिन थोड़ी सी भी सच्चाई जागेगी तो आंतरिक संघर्ष तो आएगा ही आएगा बिना इस। वो तो शेरविन ने बड़े सुंदर ढंग से बात की है सावित्री में कि दिस इज द इनर वॉर विदाउट एस्केप, मैन मस्ट ओवरकम और मिस हिज हायर फेट, यहां तक कह दिया है कि एन ईविल विस्पर ल्योर्स, ए विस्पर ल्योर्स टू ईविल द ह्यूमन हार्ट, मैन मस्ट ओवरकम और मिस हिज हायर फेट, दिस इज द इनर वार विदाउट एस्केप। तो अब जो ये तो और बल्कि डेंजरस है, अगर बाहर से हम कोई चीज कर रहे हैं और अंदर से बिल्कुल चेंज नहीं करने की चेष्टा कर रहे हैं तो ये तो डायबोलिक भी हो जाती है कई बार। तो जिस भी स्तर पर ये सच है कि मन जितने तीव्रता से शीघ्रता से ग्रहण करता है प्राण नहीं चल पाता है, लेकिन प्रयास तो होना चाहिए उस दिशा में। शरीर तो सबसे पीछे रहता है लेकिन प्रयास निश्चित रूप से होना चाहिए, और जहां सच्चा प्रयास है कृपा निश्चित रूप से सहायता करती है। पर वहां की हम प्रयास ही नहीं करेंगे, हम बस मन में हमने पढ़ ली किताबें उतना काफी है, तो वो काफी नहीं है, वो तो बड़ा भयानक है, वो डायबोलिक हो जाता है एक समय के बाद। जैसे मुल्ला मौलवी पंडित पादरी किताबें पढ़ ली हैं लेकिन जो जीवन है वो नहीं बदला, वो नहीं होना चाहिए।
एक बार सुंदर वाक्य आपने और कहा है कि व्रति युद्ध की कठोरता को बदलना होता है, अगर व्रति नहीं बदलेगी वो उसके लिए कठोरता करना पड़ेगा, और तभी आदमी जब नरम होकर के बदलेगा तभी बदलाव आएगा।
बिल्कुल बिल्कुल,
इसमें आती है कि झुकता वही है जिसमें जागरण होती है,
वाह,
कठोरता को मुर्दे की पहचान होती है।
वाह बहुत सुंदर, अति सुंदर।
मनोज भैया या अन्य हमारे बीच में साधक हो तो अब हमारे पास समय समाप्त हो रहा है, कृपया आप मनोज भैया आप अपने साधक।
मेरी आवाज आ रही भैया?
हाँ बिल्कुल आ रही है, आपके दर्शन भी हो रहे हैं।
एक इसमें एक चीज और मैं मतलब समझना चाहता हूँ कि जैसे कि कई बार नई सृष्टि के निर्माण के लिए भी पुरानी चीजें जो जाने को तैयार नहीं होती, कई बार युद्ध उनको भी साफ करने का माध्यम बनता है।
बिल्कुल,
वो नई सृष्टि में सहायक नहीं होंगे। मैं थोड़ा सा ये गीता की भूमिका जो किताब श्री अरविंद ने लिखी है उसका एक पैराग्राफ आपको सुनाता हूँ। महाभारत के समय आसुरिक बल के भार से पृथ्वी अस्थिर हो चली थी। भारत में ऐसे तेजस्वी पराक्रमी प्रचंड छत्री तेज का विस्तार ना तो उसके पहले ही कभी हुआ ना बाद में हुआ, लेकिन उस भीषण बल के सदुपयोग की संभावना बहुत ही कम थी। जो लोग इस बल के आधार थे भी सभी आसुरिक प्रवृत्ति के थे, अहंकार दर्प स्वार्थ स्वेच्छाचार उनकी मज्जा में बसा। अगर श्री कृष्ण इस बल का नाश कर धर्मराज्य की स्थापना नहीं करते तो जिन तीन तरह के परिणामों के बारे में कहा गया है वह एक ना एक बार जरूर घट और असमय भारत मलिच्छों के हाथों में जा गिरता।
बिल्कुल बिल्कुल,
कई बार जो है भगवान जो है उसको नई सृष्टि की नई फसल बोने के लिए हम लोग भी एक बार पूरा खेत साफ करते हैं।
बिल्कुल,
छोड़ देते हैं ताकि सारी चीजें खत्म हो जाए, एक नई चीज है तो नई चीज पैदा होगी।
यही मैं कहना चाहूंगा कि कई बार लोग ऐसे निर्णय नहीं ले पाते हैं जो श्री कृष्ण लेते हैं, और क्यों? क्योंकि उनको या तो एक पब्लिक ओपिनियन का या इसका डर होता है, कई तरह से उनको डर होता है, कई प्रकार के इसके परिणाम क्या होंगे। लेकिन अगर वो उस समय उनके अंदर एक अदम्य साहस या श्रद्धा हो और वो निर्णय ले लें उचित निर्णय, तो वो सच में पूरे राष्ट्र के लिए और समाज के लिए सही होता है। अब इसका क्लासिक उदाहरण तो यही है जो 71 का युद्ध हुआ था जिसमें शिवा ने मैसेज दिया था स्वयं उस समय की जो प्रधानमंत्री थी कि इंडिया इज फाइटिंग फॉर द ट्रायम्फ ऑफ ट्रूथ एंड इट मस्ट कंटिन्यू टू फाइट। अब इस मतलब ये कि भाई माँ का जब आश्वासन है तो उनकी शक्ति आपके साथ में। अब लोग कई इफ्स एंड बट्स लगाते हैं कि नहीं नहीं वो अगर हमारे साथ वो तबका आ जाता तो क्या होता, कुछ नहीं होता। ये हम जो सोचते हैं ये अब देखिए क्या हो रहा है, ना भारत के लिए ये अच्छा हुआ ना पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। वहाँ भी आप बलूचिस्तान वो कराची हम पहुँचने वाले थे, यहाँ भी वो एक कांस्टेंट ब्लीडिंग पॉइंट रह गया हमारे लिए। तो कभी कभी ये कठोर निर्णय लेकर के करना पड़ता है इस चीज़ को जो श्री कृष्ण जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं, और वही हम लेंगे तो रास्ता साफ होता है। क्योंकि अब आप बाद में रिजॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप वो निर्णय अगर नहीं ले रहे हो, रुक रहे हो क्योंकि आपने एक मेंटल आइडिया बना लिया है, एक तो हमारे यहाँ वो नॉन वायलेंस की बड़ी वो छाप पड़ी है, मेंटल आइडिया बना लिया कि नहीं युद्ध बुरा ही है, युद्ध खराब है, युद्ध तो बुरे लोग लड़ते हैं, तो ये जो मेंटल आइडिया है या पब्लिक ओपिनियन का डर इन चीज़ों का, तो इनसे तो मनुष्य को आत्मजयी की ये भी तो एक भूमि है जो श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मजयी बनाने की ओर संकेत करते हैं कि तुझे अपने मेंटल आइडियाज ओपिनियन इसके भी ऊपर उठना है कि तुझे क्या प्रिय लग रहा है, तुझे क्या अच्छा लग रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसमें सच में मानवता का हित है, राष्ट्र का हित है।
कीमत समझ ये है भैया, जितना मैं सोच पाता हूँ श्री कृष्ण के बाद दुनिया में पहले ऐसी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ये बहुत विनम्रता लेकिन बहुत दृढ़ता से कहा है कि यदि समय आने पे युद्ध ही विकल्प हो तो फिर उसको बहुत जोर से लड़ना चाहिए, पूरी शिद्दत से, और उसको गले लगाने।
बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल निसंदेह बिल्कुल।
श्री कृष्ण और श्री अरविंद के बीच में मुझे कोई ऐसा
हाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है बिल्कुल।
कहा हो कि अगर युद्ध अनिवार्य है तो फिर उसका कोई विकल्प नहीं है,
बिल्कुल,
और उसी से रास्ता नया निकलता,
बिल्कुल बिल्कुल निसंदेह। जय मां जय मां जय मां।
तो आज का बहुत सुंदर वार्तामाला क्रम हम समाप्त कर रहे हैं। चार पंक्तियां मुझे भी याद आ गईं, अंतिम बार समर के पहले अपना हृदय डटोल रहा हूँ, गीता रखकर आज महाभारत के पन्ने खोल रहा हूँ। तभी जो श्री अरविंद ने कहा कि, और जैसा कि भैया ने, आलोक भैया ने कहा, मनोज भैया ने कहा कि निश्चित रूप से श्री कृष्ण के बाद श्री अरविंद ऐसे हुए जिन्होंने उस वाणी का विस्तार किया है, उस ज्ञान का विस्तार किया है, और अगर लड़ना है युद्ध तो पूरी क्षमता से लड़ना है। बहुत सुंदर आज का व्याख्यान था, पुनः की कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं।
जय मां जय मां जय मां।
आज के इस वार्ता क्रम का समापन पुनः श्री मां के ध्यान से करें। ध्यान संगीत के लिए मोनिका जी कृपया संगीत बजाइए।